लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta dell'evangelizzazione nel mondo contemporaneo.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज हम सुसमाचार प्रचार के वर्तमान संदर्भ में मान्य कार्ता के बारे में सुनेंगे, जो संत पापा पॉल छाटवे के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली नुनसेंदी से संबंधित है। इसे सन 1975 में लिखा गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कल लिखा गया हो। सुसमाचार का प्रचार अपने में साधारण धर्म शिक्षा और नैतिक शिक्षा से बढ़कर है। यह प्रथम स्थान में यीशु ख्रिस्त से व्यक्तिगत मिलन का साक्ष्य है। साक्ष्य के बिना सुसमाचार का प्रचार नहीं हो सकता है। हम उस शब्द का साक्ष्य देते जिसने शरीर धारण किया, जिसमें मुक्ति भरी है। यह अपरिहार्य साक्ष्य है, क्योंकि सर्वप्रथम संसार को सुसमाचार प्रचारकों की आवश्यकता है, जो ईश्वर के बारे में कहते हैं, जिसके बारे में वे स्वयं जानते हैं और जिनसे वे व्यक्तिगत रूप में परिचित हैं। यह किसी विचारधारा या सिद्धांत को जो ईश्वर के बारे में हो प्रसारित करना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर को प्रसारित करना है जो मुझ में जीवन का कारण बनते हैं। और इससे भी बढ़कर आधुनिक मानव शिक्षकों की अपेक्षा साक्षियों को स्वाभाविक रूप में सुनता है, और यदि वह शिक्षकों को सुनता है तो उनके साक्ष्यों के कारण। ख्रिस्त का साक्ष्य इस भांति सुसमाचार प्रचार का प्रथम माध्यम है, और इसकी प्रभावकारिता के लिए एक आवश्यक शर्त जिससे सुसमाचार की घोषणा फलप्रद हो सके। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि हमें इस बात को भी आवश्यक रूप से याद रखने की जरूरत है कि साक्ष्य अपने में विश्वास की घोषणा को समाहित करती है। कहने का अर्थ, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर में अटल विश्वास, जिन्होंने हमारी सृष्टि की और जिन्होंने अपने प्रेम के कारण हमें मुक्ति प्रदान किया। यह विश्वास हम में परिवर्तन लाती है। यह हमारे संबंधों में सुधार लाती है। हमारे विश्वास हमारे कार्य करने के तरीकों और गुणों को हमारे जीवन में निर्धारित करती है। साक्ष्य अतः उस तथ्य पर विश्वास और उसकी घोषणा करने वाले के बीच की निरंतरता, जिसे व्यक्ति जीता है, अलग नहीं किया जा सकता है। एक विश्वासी होना सिर्फ एक धर्म सिद्धांत या विचारधारा की घोषणा करना नहीं है। यह एक व्यक्ति के विश्वास और उसके जीवन जीने के बीच सामंजस्य है। विश्वास करना और उसे जीवन में जीना। बहुत से ख्रिस्तीय विश्वास करने की बात कहते हैं, लेकिन वे उसे नहीं जीते, और यह पाखंडता है। यह साक्ष्य के विपरीत है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, हम में से प्रत्येक जन को तीन मूलभूत सवालों का उत्तर देने की जरूरत है, जिसे संत पापा पॉल छाटवे हमारे बीच रखते हैं। आप जिस बात की घोषणा करते हैं, क्या उसमें विश्वास करते हैं? क्या आप उस विश्वास को जीते हैं? आप जिस बात की शिक्षा देते, क्या उसे जीते हैं? हम बने बनाए उत्तरों में अपने को संतुष्ट नहीं रख सकते हैं। हम अपने में जोखिम उठाने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी खोज को अस्थिर करते हुए पवित्र आत्मा में पूर्ण रूपेण विश्वास करने हेतु बुलाए जाते हैं, जो हम सबों में क्रियाशील है, जो हमें अपनी सीमाओं से परे, हमारी कमजोरियों त्रुटियों से परे ले चलती है। इस अर्थ में ख्रिस्तीय जीवन अपने में पवित्रता की एक यात्रा बनती है, जो बपतिस्मा में आधारित है, जो हमें ईश्वरीय दिव्यता के भागीदार बनाता है। इस भांति वे वास्तव में पवित्र बनते हैं। यह एक पवित्रता है जो कुछ एक लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। यह ईश्वर का एक उपहार है जो हमें दिया जाता है और जिसे हम अपने लिए साथ ही दूसरों के लिए फलहित बनाते हैं। ईश्वर ने हमें चुना और प्रेम किया है। इस प्रेम को दूसरों तक ले जाने की आवश्यकता है। संत पापा पॉल छठवें अपनी शिक्षा में कहते हैं कि सुसमाचार का प्रचार पवित्रता से प्रस्फुटित होता है। यह उस हृदय से उत्पन्न होता है जो ईश्वर में है। यह प्रार्थना के द्वारा पोषित होता और उससे भी बढ़कर परम प्रसाद में प्रेम के द्वारा। इसके बदले यह उन व्यक्तियों में पवित्रता की वृद्धि करता है जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वहीं पवित्रता के बिना सुसमाचार प्रचारक के वचन द्वारा आधुनिक मानव के हृदय को स्पर्श करना कठिन होगा और यह जोखिम बेकार और व्यर्थ कार्य होगा। अतः हमें इस बात से सचेत रहने की आवश्यकता है कि सुसमाचार प्रचार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है जो अपने को विश्वास से अलग पाते या दूसरे धर्मों में विश्वास करते हैं, बल्कि यह हम सबों के लिए भी है जो ख्रिस्त पर विश्वास करते और ईश्वर के वचन के प्रति सक्रिय हैं। इस साक्ष्य हेतु कलीसिया को चाहिए कि वह स्वयं अपने लिए सुसमाचार को प्रचारित होने दे। यदि कलीसिया में यह नहीं होता तो वह एक संग्रहालय की भांति रह जाती है। इसके बदले हमें चाहिए कि हम अपने को निरंतर सुसमाचार प्रचार से नवीकृत करें। कलीसिया को चाहिए कि वह बिना थके उन बातों को सुने, आशा के अपने कारणों को प्रेम की नई आज्ञा पर जिन पर वह विश्वास करती है। कलीसिया वह ईश प्रजा है जो दुनियादारी में बहुधा मूर्ति पूजा के प्रलोभन में डूबी है। उसे सदैव ईश्वर के कार्य को सुनने की जरूरत है जिसे ईश्वर घोषित करते हैं। एक शब्द में इसे सुसमाचार को लेते हुए प्रार्थना करने और पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करने की जरूरत है जो हृदयों में परिवर्तन लाता है। एक कलीसिया जो अपने में सुसमाचार को सुनती है जिससे वह सुसमाचार को प्रसारित कर सके, अपने में पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होती है, अपने में निरंतर परिवर्तन लाती और नवीनता की एक चुनौतीपूर्ण मार्ग में चलती है। यह इतिहास में सुसमाचार की उपस्थिति को समझने और उसे जीने के तरीकों में बदलने की क्षमता भी रखती है। यह सदैव इस तरह से किया गया है कि तर्क को अपनाने और उसमें शरण लेने से परहेज करती है। ऐसी कलीसिया ईश्वर की ओर पूर्ण रूपेण अभिमुख होती, अतः वह मानव मुक्ति की परियोजना में सहभागिता का अनुसरण करती और पूरी तरह मानवता हेतु समर्पित होती है। ऐसे कलीसिया समकालीन दुनिया से संवाद करती है, भाईचारे के रिश्तों को बुनती है जो मिलन हेतु स्थानों को तैयार करती है। आतिथ्य, स्वागत, मान्यता और दूसरों के संग एकता और अन्यों की अच्छी प्रथाओं को धारण करती है। साथ ही सामान्य घर की देखरेख करती है जो सृष्टि है। संत पापा ने कहा, अर्थात कलीसिया दुनिया के संग वार्ता करती है। वह रोज दिन ईश्वर से भेंट करती और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में सुसमाचार को घोषित करती है। पवित्र आत्मा के बिना हम कलीसिया में केवल विज्ञापन करेंगे, सुसमाचार प्रचार नहीं। यह पवित्र आत्मा है जो हमें सुसमाचार प्रचार हेतु प्रेरित करते हैं, जहां हम अपने को ईश्वर के सच्चे संतान स्वरूप पाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला के अंत में एवेंजेली न्यूनसेंदी को संत पापा पॉल छठवें की अद्भुत कृति घोषित करते हुए इसे पढ़ने का निवेदन किया। तदुपरांत उन्होंने सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने विश्व जल दिवस को याद करते हुए कहा, आज विश्व जल दिवस है। जल कभी भी बर्बादी या दुरुपयोग की वस्तु नहीं होनी चाहिए या इसे युद्ध का आधार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसे हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। संत पापा ने लाउदातो सी में असीसी के संत फ्रांसिस के शब्दों को याद किया, मेरे प्रभु बहन जल के माध्यम से आपकी स्तुति हो, जो बहुत उपयोगी, विनम्र, कीमती और पवित्र है। उन्होंने कहा, हम सृष्टि की सुंदरता और इसकी देखभाल में शामिल चुनौतियों के प्रति जागरूकता को महसूस करते हैं। संत पापा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का द्वितीय जल सम्मेलन इन दिनों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो रहा है। बुधवार से शुरू होने वाले 3 दिवसीय जल शिखर सम्मेलन में हजारों प्रतिनिधि शामिल होंगे। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मैं सम्मेलन की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह महत्वपूर्ण आयोजन उन लोगों के पक्ष में पहल को गति देगा जो इस प्राथमिक वस्तु जल की कमी से पीड़ित हैं। इसके बाद संत पापा ने कहा, मैं पिछले साल के 25 मार्च को याद करता हूं, जब दुनिया के सभी धर्माध्यक्षों के साथ मिलकर मैंने कलीसिया और मानवता, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन को माता मरियम के निष्कलंक हृदय को समर्पित किया था। उन्होंने कहा, आइए हम शांति की रानी को शांति के लक्ष्य को समर्पित करते हुए न थकें। मैं हर विश्वासी और समुदाय, विशेष रूप से प्रार्थना समूहों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे हर 25 मार्च को माता मरियम के प्रति समर्पण को नवीनीकृत करें, ताकि वे जो हमारी माता हैं, हम सभी को एकता और शांति में संरक्षित कर सकें। संत पापा ने समझाते हुए कहा, यह कोई जादू सूत्र नहीं है, लेकिन एक आध्यात्मिक कार्य है। यह बच्चों की ओर से पूर्ण विश्वास का कार्य है, जो इस क्रूर और संवेदनहीन युद्ध में क्लेश के बीच, जो हमारी दुनिया के लिए खतरा है, हमारी माँ की ओर मुड़ते हैं, अपने सभी भय और दर्द को उसके दिल में रखते हैं और खुद को उसे समर्पित करते हैं। इसके बाद संत पापा ने पीड़ित यूक्रेन को याद करते हुए अपनी अपील समाप्त की। जैसा कि युद्ध के प्रकोप के बाद से उन्होंने लगभग हर आम दर्शन समारोह में किया है, अपने श्रोताओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे यूक्रेन को कभी न भूलें, जो बुरी तरह से पीड़ित है। उधर संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक, प्रेरितिक राजदूत, महाधर्माध्यक्ष फोर्तुनातुस नुआचुकवु ने जिनेवा में मानव अधिकार परिषद के 52वें सत्र में कहा, हाल के वर्षों में हिंसा और दमनकारी कृत्यों में तेजी आई है, विश्वासियों को अक्सर अपना विश्वास व्यक्त करने और धर्म का अभ्यास करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, भले ही उनका विश्वास सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में न डाले या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। वे कई व्यक्तियों और समुदायों की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाना चाहते थे जो अपने धार्मिक विश्वासों के कारण उत्पीड़न के शिकार हैं। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में हमने दुनिया के कई देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ यहाँ तक कि राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा दमनकारी उपायों और दुर्व्यवहारों की तीव्रता देखी है। विश्वासियों को अक्सर अपने विश्वास को व्यक्त करने और अभ्यास करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। यह बहुत ही चिंताजनक है कि कुछ देशों के विश्वासियों की स्थिति जहां सहिष्णुता और समावेशन के मुखौटे के पीछे अधिक सूक्ष्म और कपटपूर्ण तरीके से भेदभाव किया जाता है। देशों की बढ़ती संख्या में हम सेंसरशिप के विभिन्न रूपों को लागू होते देख रहे हैं, जो दूसरों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के बहाने सार्वजनिक और राजनैतिक दोनों तरह के अपने विश्वासों को व्यक्त करने की संभावना को कम करते हैं। संत पापा फ्रांसिस की अपीलों को याद करते हुए राजदूत ने रेखांकित किया कि हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि ख्रिस्तियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव उन देशों में भी बढ़ रहे हैं जहां ख्रिस्तीय अल्पसंख्यक नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता भी खतरे में है जहां आस्तिक समावेशन की एक गलत अवधारणा के नाम पर सीमित समाज के जीवन में अपनी मान्यताओं को व्यक्त करने की अपनी क्षमता को देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, जिसे केवल पूजा अर्चना की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं किया जा सकता, यह एक गरिमापूर्ण जीवन शैली के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में से एक है। सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे इस अधिकार की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य भलाई के अनुरूप अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की संभावना का आनंद ले, यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में और अपने विश्वास के अभ्यास में भी। उधर कलीसियाओं की विश्व परिषद WCC ने यरूशलेम में पवित्र स्थलों पर हुई हमलों की निंदा की और उनकी सुरक्षा की मांग की है। 19 मार्च को पूर्वी यरूशलेम के गेतसेमानी के गिरजाघर में हुए हमले के मद्देनजर जारी एक बयान में WCC के महासचिव रेवरेंड डॉक्टर जेरी पिल्ले ने कहा कि वे यरूशलेम के ऑर्थोडॉक्स प्रातिधर्माध्यक्ष की अपील में शामिल हुए हैं। प्रातिधर्माध्यक्ष थियोफिलुस तृतीय ने गिरजाघर में, जहां कुंवारी मरियम का मकबरा स्थित है, दो पुरुषों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की और ख्रिस्तियों एवं उनके पवित्र स्थानों के बेहतर सुरक्षा के लिए अपील की। WCC के महासचिव ने रेखांकित किया, हम यरूशलेम के प्रातिधर्माध्यक्ष और पवित्र स्थलों की सुरक्षा की मांग करने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और हम ख्रिस्तीय छुट्टियों के दौरान और सभी धार्मिक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण दिनों के दौरान सुरक्षा के अपने आह्वान को दोहराते हैं। उधर यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले सम्मेलन में दानदाताओं ने पिछले महीने के विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद के लिए 7 अरब यूरो देने का संकल्प लिया है। तुर्की की गणना के अनुसार भूकंप से हुए विनाश की लागत $104 बिलियन तक पहुंच जाएगी। 6 फरवरी को आए भूकंप में तुर्की और सीरिया में 56 से अधिक लोग मारे गए। भूकंप से बचे हुए बहुत सारे लोग अपनी सारी संपत्ति खो दिए हैं और एक झटके में शरणार्थी बन गए हैं। देश का प्राथमिक लक्ष्य आश्रय, भोजन और स्कूली शिक्षा जैसी जरूरतों को तत्काल पूरा करना है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।